नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से याकूब की पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और जिसका मुख्य विषय है मसीही व्यवहारिक जीवन। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रविष्य के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को आज सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से याकूब की पत्री नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने यह देखा है कि हमें परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं है परंतु उसके अनुसार चलना भी है। और इतना ही नहीं, हमें यह भी बताया गया है कि वचन एक दर्पण के समान है जो हमारी कमी घटियों को, हमारी त्रुटियों को दिखाता और बताता है। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। याकूब की पत्री एक अध्याय उसके 25 पद से आरंभ करते हैं। पद 25 में हम वचन का प्रयोजन देखते हैं। तो आइए हम पढ़ें याकूब की पत्री एक अध्याय उसका 25 पद। यहां पर लिखा हुआ है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यहां पर लिखा है ध्यान करता, अर्थात मन लगाकर पढ़ता है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, यह मूसा की व्यवस्था नहीं है, यह अनुग्रह की व्यवस्था है। यहाँ पर याकूब व्यवस्था को पौलुस के अभिप्राय से काम में नहीं ले रहा है, क्योंकि पौलुस जब व्यवस्था का उल्लेख करता है तो वह मूसा की व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करता है, परंतु याकूब विश्वास की व्यवस्था के बारे में कह रहा है। पुराने नियम में व्यवस्था में प्रेम निहित है, जबकि नए नियम में प्रेम में व्यवस्था है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो निश्चय ही तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में वह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और तब हम देखते हैं गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस लिखता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। अब कौन सी व्यवस्था? मसीह की व्यवस्था। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। सड़क पर चलते समय आप अनेक वाहन देखते हैं, भीड़ बहुत अधिक है और नियम भी हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि आप स्वतंत्र होकर वाहन चलाएं, तो आपको नियमों का पालन करना है। प्रभु यीशु में स्वतंत्रता है और वही एकमात्र सच्ची स्वतंत्रता है। परंतु यह तो निश्चित जान लें कि यदि आप मसीह में हैं, तो आपको उसकी आज्ञाएं मानना अवश्य है और उसके नियम कठोर नहीं हैं। उसमें आपको कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको 10 आज्ञाओं को अनदेखा करने की स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, नियम दुर्बल व्यक्ति प्राकृतिक मनुष्य के लिए होते हैं, नियम तोड़ने वालों के लिए बनाए जाते हैं। क्या करना है, कहां जाना है, कैसे चलना है आदि सब दंड के साथ व्यक्त किए जाते हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए है। निष्ठावान नागरिकों को नियमों की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो अपने नगर के आधे से अधिक नियमों को जानता भी नहीं, परंतु वकील सब नियम जानते हैं, क्योंकि वे नियमों का उल्लंघन करने के उपाय खोजते रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी संतान को एक ऊंचे स्तर पर बुलाया है। परमेश्वर के संतान के लिए आत्मिक सहज वृत्ति है, एक ऊंचा और गौरवशाली उद्देश्य है, परमेश्वर की प्रेरणा है। विश्वासी में हत्या करने की अभिलाषा नहीं होती है, वह नियमों से ऊपर के स्तर पर रहता है। वह उद्धारकर्ता के प्रेम से प्रेरित जीवन जीता है और उसके आज्ञा पालन में जीना चाहता है। हम जितना अधिक वचन पढ़ेंगे उतना ही अधिक ज्ञान ग्रहण करेंगे। हम प्रेम का जीवन जिएंगे। आनंद हमारी आत्मा को भर देगा। हम दास नहीं हैं कि हमें मार पीट कर वह काम करवाया जाए जो हम करना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, हम स्वतंत्र हैं, मसीह में स्वतंत्र हैं। आवश्यक नहीं कि हम देश के नियम कानून में प्रवीण हों, परंतु हमें परमेश्वर के वचन को जानना आवश्यक है, यदि हमें परमेश्वर के लिए जीना है। तब आपको समझना है, क्योंकि समझे बिना आप प्रभु का हाथ नहीं थाम सकते। आज अनेक जन परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। वचन को नहीं जानना अपमानजनक नहीं है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं जन्म से ही अज्ञानी था। मैं जन्म के समय क और ख भी नहीं जानता था। मैं चलना और बोलना भी नहीं जानता था। मेरी दशा बहुत बुरी थी, दयनीय थी, परंतु मैं उसी में पड़ा नहीं रहा। आप भी नहीं रहेंगे। अतः अज्ञान अपमान की बात नहीं है, परंतु परमेश्वर की संतान को अज्ञानी बना रहना बड़ा ही अपमानजनक बात है। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 26 पद में लिखा हुआ है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। लिखा है धार्मिकता और धर्म वास्तव में बाइबल के शब्द नहीं है, वे नए नियम में केवल 6 बार ही आए हैं। याकूब इनका उपयोग अन्य लेखकों से कहीं अधिक करता है। धर्म शब्द लैतिनी अर्थात लितानी भाषा का है जिसका मूल अर्थ है बांधना। हेरोदोटस ने इस शब्द को काम में तो लिया था परंतु सामान्यतः यह यूनानी भाषा का शब्द नहीं था। उसने मिस्री पुजारियों के संबंध में धर्म का उपयोग किया था। इस शब्द का अभिप्राय था संस्कारों को निभाना, अनुष्ठान पूरे करना आदि। मेरे प्रियो, आज अनेक धर्म हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि उनके अनेक श्रद्धालु हैं, जो निष्ठावान हैं, उत्साही हैं, परंतु आप मसीही विश्वास को धर्म नहीं कह सकते कि वह एक तंत्र या पालन करने की विधि है। मसीही विश्वास धर्म नहीं, एक मनुष्य है। यह मनुष्य प्रभु यीशु है। आप या तो उसे ग्रहण करें या उसका त्याग करें। याकूब कहता है कि यदि धर्मी जन अपनी जीव को वश में ना रखे तो उसका धर्म कोई सा भी क्यों ना हो वह व्यर्थ है। अब एक विश्वासी और उसकी जीव के बारे में क्या कहें? याकूब अपनी पत्री के अध्याय 3 में परमेश्वर की संतान और जीव को वश में रखने के विषय में बहुत कुछ कहता है। किसी ने कहा है, आप सुनी हुई बातों में आधे से अधिक पर विश्वास नहीं करते परंतु उन्हें दोहराएंगे, और यह अवश्य है। आज की कलीसिया में यह एक मुख्य समस्या है। हम में अग्निमय जीव वाले बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीव के द्वारा लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। याकूब के पत्र 1 अध्याय उसके 27 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यह एक अद्भुत बात है। यदि आपको सही धर्म चाहिए तो ये 2 बातें होना आवश्यक है, और मसीही विश्वास में ये दोनों अति आवश्यक हैं। लिखा है, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें। यह व्यवहारात्मक पक्ष है। परमेश्वर की संतान को संसार के दुखों और मनुष्य की परेशानियों में उनसे संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। मेरे प्रियो, नेता लोग ऐसा ही करते हैं। वे लोगों से भेंट करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, वे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं। इसी प्रकार मसीही जनों को भी मनुष्यों में जाना चाहिए। आराधनालय के जीवन जीने में संकट है यदि हमारा जीवन सड़क का जीवन ना हो। हमें संसार से व्यक्तिगत संपर्क बनाना है जिसमें उदारता हो, दया हो और सहायक होने की इच्छा हो, सहायता करने का स्वभाव हो। हम पढ़ते हैं, लिखा है, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। संसार से संपर्क करने का यह अर्थ नहीं कि हम सांसारिकता में लीन हो जाएं। विश्वासी इस संसार में रहते हैं परंतु इस संसार के नहीं हैं। मुझे एक छोटे बालक की कहानी याद आती है। उसकी माता का देहांत हो गया था। उसका पिता बहुत गरीब था परंतु उसने कठोर परिश्रम करके उसका पालन पोषण किया। उसके धनवान संबंधी उसमें रुचि लेने लगे। उन्होंने उसके पिता से कहा, आप इस बालक को जीवन की आवश्यकताएं नहीं पूरी कर पा रहे हैं। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हम इसे सब कुछ दे पाएंगे। पिता यह बात सुनकर पुत्र के पास गया और उससे कहा कि वह उनके साथ चला जाए। उसने कहा, वे तुझे साइकिल, खिलौने और बड़े दिन के उपहार देंगे और तुझे घुमाने के लिए ले जाएंगे। मैं जो न कर पाया वह सब वे तेरे लिए करेंगे। उस बालक ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। पिता ने पूछा, क्यों? वे मुझे आप नहीं दे पाएंगे। उस बालक को बस यही चाहिए था कि उसका पिता उसके साथ हो। आज संसार में अनेक जनों को ऐसा संबंध चाहिए। मेरे मित्रों, आप यह मधुर, दयावान, प्रेमी, सहानुभूति का संबंध दे सकते हैं, परंतु निष्कलंक रहना ना भूलें। हम संसार में ऐसे खो जाते हैं कि हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय एक समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय दो से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसका विषय है, परमेश्वर मनुष्यों के संबंध में विश्वास को परखता है। परमेश्वर भले कामों द्वारा विश्वास को परखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य के संबंध में व्यवहार और कार्य द्वारा विश्वास को परखता है। इस अध्याय के 13 पदों में याकूब बताता है कि हम समाज के विभिन्न वर्गों के साथ कैसा व्यवहार करें। आप धनवान के साथ कैसा व्यवहार करें, आप गरीब मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करें, आप प्रतिदिन आपके संपर्क में आने वाले मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करें। इस अंश में गरीबी के साथ परमेश्वर का संघर्ष और रोचक बात तो यह है कि वह धनवानों का विरोध करता है। गरीबी के विरोध उसके विचार हमारी सरकार के विचारों से अलग हैं। हमारी सरकार तो इस समस्या का समाधान खोजने में असफल रही है। मेरे प्रियो, गरीबी हो या धनवान, वह श्राप बन सकती है। मानव जाति पर श्राप का एक कारण था और वह है गरीबी, या हो सकता है अमीरी। नीति वचन में लिखा है 30 अध्याय के 8 पद में, मुझे न तो निर्धन कर और न गरीब बना। सुसमाचार के लिए सबसे कठिन लोग वे हैं जो या तो बहुत गरीब हैं या बहुत धनवान हैं। वहां परमेश्वर का वचन पहुंचाना लगभग असंभव है। मुख्य समस्या है संसार में धन का असंतुलन। राजनीति और जातिवाद मूल समस्या नहीं है। भारत में लाखों लोग भूख से मरते हैं। इसकी तुलना धनवानों के ऐश्वर्य से करें। परमेश्वर इस पत्री में इसी समस्या को उजागर करता है और गरीबों का पक्ष लेता है। मैं बहुत खुश हूं कि प्रभु यीशु इस संसार में किसी धनवान का पुत्र नहीं था। उसका जन्म गौशाले की चरनी में हुआ था। उसने जनसमूह को खाना खिलाने के लिए एक युवक से रोटी और मछली मांगी थी। जिस नाव पर वह चढ़कर प्रचार करता था या उसने प्रचार किया, वह भी मांगी हुई थी। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 20 पद में उसने कहा था, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह भी नहीं है। उसने विरोधियों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिक्का मांगा था। जिस गधे पर सवार होकर वह यरूशलेम गया था, वह भी मांगा हुआ था। जिस कमरे में उसने फसा खाया था, वह भी उसका अपना नहीं था। उसका क्रूस भी बरब्बा का था। उसकी कब्र अरमतिया के यूसुफ की थी। मेरे मित्रों, सब कुछ दूसरों का था। आज भी मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में था, तब एक प्रचारक ने गरीबी की आशीषें पर प्रचार किया था। मैं तो एक अत्यधिक गरीब विद्यार्थी था। मैं पैसा उधार लेकर और काम करके कॉलेज की फीस भरता था। वह प्रतिदिन सुबह हमारे आराधनालय में प्रचार करता था। कहा जाता था कि वह वर्ष में $15,000 पाता है। उस युग में यह धनराशि बहुत बड़ी मानी जाती थी, क्योंकि पैसों का मूल्य बहुत था। मेरे लिए तो उसकी बातें अर्थहीन थी, जैसे चिकने घड़े पर पानी गिरना। मैं तो जन्म से ही एक बात जानता था कि गरीबी में कोई आशीष नहीं है, वह एक श्राप है। यीशु ने भी श्राप उठाया तो उसमें गरीबी का श्राप था। मेरे मित्रों, याकूब अपने इस पत्री में कहेगा कि धनवान होना भी श्राप है। पहला तिमोथियुस के पत्र 6 अध्याय के 10 पद में पौलुस ने लिखा, रुपये का मोह सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पौलुस और याकूब इस बात में एक मत हैं। आप गलत बातों के लिए अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, आप अपना पैसा गलत बैंक में भी रख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6:19 में प्रभु यीशु ने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। सब बैंक हमें बताते हैं कि हम अपना पैसा वहां रखें, परंतु परमेश्वर कहता है कि मेरे पास भी एक बैंक है, मैं वहां आपका निवेश संभाल कर रखूंगा। मेरे प्रियो, अध्याय 5 में हम देखेंगे कि याकूब धनवानों के साथ कठोर व्यवहार करता है। नीति वचन 30:8 में मसीहियों का सिद्धांत होना है, मुझे न तो गरीब बना और न ही धनवान बना। गरीबी की समस्या का समाधान परमेश्वर के विचार में क्या है? धनवान को लूटकर रुष्ट को संतोष देना, आलसी, निठल्ले, आवारा, निकम्मे की सुधि लेना। दूसरी ओर परमेश्वर दया दान पर रखकर गरीब का मान सम्मान, आत्म सम्मान और साख को हानि नहीं पहुंचाता है। परमेश्वर का संघर्ष पैसों के झंडे के नीचे नहीं चलता है और न ही वह सिर या पेट से संबंधित है, वह दिल से संबंधित है। यह सामाजिक वर्गों से संघर्ष है। याकूब विश्वासियों में पैसे के कारण उत्पन्न विभाजन के संबंध में चर्चा कर रहा है। तो आइए हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री 2:1। लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। हमारे महिमामय प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास। याकूब प्रभु यीशु का भाई था, परंतु यहां वह उसे उसके पूरे नाम से संबोधित करता है। प्रभु यीशु मसीह और उसे महिमायुक्त भी कहता है। मेरे प्रियो, यह प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति है। मैं यीशु के छोटे भाई के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता जो प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का निर्धारण करे, क्योंकि दोनों एक ही घर में पले और बढ़े थे। मेरे विचार में याकूब किसी भी धर्म विज्ञान के ज्ञानी की तुलना में प्रभु यीशु के ईश्वरत्व पर चर्चा करने में अधिक अधिकृत स्थान पर था। आज धर्म विज्ञान के ज्ञानी प्रथम शताब्दी और यीशु के घर संसार से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हैं। वह तो अपने संसार से भी अनभिज्ञ है। मैं याकूब की बात मानता हूं। प्रभु यीशु वास्तव में महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, याकूब के कहने का अर्थ यह नहीं कि हम प्रभु यीशु में विश्वास का अंगीकार करके आत्मिक अभिमानी बने, कलीसिया में किसी गुट में सहभागी न हो। मसीह की देह में सब विश्वासी भाई हैं, चाहे कलीसियाई वर्ग कोई भी क्यों न हो। विश्वासियों में सहभागिता होनी है, मित्रता उनका झंडा होना चाहिए। याकूब संपूर्ण मसीह समुदाय को संबोधित कर रहा है, जिसमें गरीब, अमीर और मध्य वर्ग, बड़े और छोटे, दास, स्वतंत्र, यहूदी, अन्य जाति, बर्बर, यूनानी, स्त्री, पुरुष सब हैं। मसीह की देह में सब एक हैं। विश्वासियों में भाईचारा है और केवल प्रभु यीशु एकमात्र आधार है। विश्वासियों में मित्रता ही सर्वोपरि है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं याकूब कहता है, तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। यदि आप मसीह के हैं और कोई और भी मसीह का है तो आप दोनों भाई हैं। यदि कोई पापी आपकी सहभागिता में आए या आपका उससे संपर्क हो तो स्मरण रखें कि प्रभु यीशु उसके लिए मरा है, वह भी आपके समान ही क्रूस के नीचे खड़ा है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में इसराइल को कहा गया था कि मनुष्य को गरीबी और अमीरी से न आके, मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर की चेतावनी है, जिसे हम लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं। न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्यों का मुंह देख विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। पत्रस ने यापा में यह सबक सीखा था जब स्वर्ग से चादर उतरी थी। उसमें अशुद्ध प्राणी भी थे और परमेश्वर ने उससे कहा कि वह उन्हें मार कर खाए। उस अनुभव से पत्रस ने निष्कर्ष निकाला जिसे हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 34 पद में पढ़ते हैं। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अपनी बात सिद्ध करने के लिए याकूब चुपता हुआ उदाहरण हमें देता है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का दास याकूब हमें बता रहा है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है और किस प्रकार गरीब और अमीरी में फर्क न रखते हुए एक विश्वासी के साथ भाई का रिश्ता रखना है। आज बहुत सारी कलीसियाएं अपने विश्वासी के साथ भाई का संबंध नहीं रख पाते हैं और यही कारण है कि आज मुझे और आपको इस अध्ययन के द्वारा से सीखना है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और परमेश्वर की निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।